इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दुनिया एक मोमिन के लिए जहन्नम की मानिंद है, एक जेल की मानिंद है, और एक काफिर के लिए जन्नत की मानिंद है। तो आइए हम लोग आज सोचें इस बात पे कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का पैदाइश का दिन, विलादत का दिन नज़दीक आ रहा है, इस बात पे थोड़ा सा सोचें कि आया कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि ये दुनिया हमारे लिए जन्नत बन चुकी है। हम लोग आखिरत के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे। तो आइए इस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के फरमान पर थोड़ा सा गौर करें आज। तमाम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद आपको कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। इतवार का खूबसूरत सा दिन, कुछ जगहों पे छुट्टी है, कुछ जगहों पे हम लोग काम पे जा रहे हैं। जैसे ईरान में छुट्टी नहीं होती और पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो है गालिबन छुट्टी है इतवार की। बहरहाल आपको बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम भी मेरे साथ और रुबाब के साथ आपको पसंद आएगा। जी रुबाब,
अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीदवार हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। खूबसूरत सी सुबह का आगाज़, खूबसूरत सा प्रोग्राम यानी सुबह ज़िंदगी के साथ कर चुके होंगे। उम्मीदवार हैं कि आपका दिन आज बहुत फ्रेश, हशाश पुशाश और ताज़ा गुजरे। जी
अच्छा, एक जो चीज़ यहाँ पर हमारे हफ्ते का मौजू जो है वो जज करना, दूसरे लोगों को ठीक जज करना, गलत जज करना, ये एक अलहदा बहस है। जज करना, राय देना दूसरे लोगों के बारे में, और एक जो बहुत बड़ा मसला इसमें है वो ये है कि बग़ैर किसी को जाने पहचाने राय देना, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। यहाँ पर एक चीज़ मैं पढ़ा था और वो बड़ी दिलचस्प चीज़ लिखी है, अलबत्ते वो ये नहीं है, वो किसी और के बारे में राय देने की नहीं है, वो अपने बारे में राय देने की है या अपनी ज़िंदगी के बारे में राय देने के बारे में लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि जब फसल काटने का वक्त आता है तो उस वक्त अपनी ज़िंदगी को के बारे में राय मत दें, उस वक्त अपनी ज़िंदगी को बुरा भला मत कहें। जब आप बीज बो रहे होते हैं तो उस वक्त सोचें और उस वक्त राय दें अपनी ज़िंदगी के बारे में, अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। ये जो बड़ी दिलचस्प बात है।
नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम इसका एक मुहावरा भी है उर्दू जबान में, बोलते हैं कि जो आपने बोया है वही आपको मिलेगा। फल बर्दा उससे निकलेगा।
बिल्कुल,
ये बड़ी अच्छी बात है। और वैसे एक बात, जो हमारे हफ्ते का मौजू चल रहा है राय देने के बारे में, दूसरों के बारे में, कभी हमने सोचा है कि हम एक राय दूसरे के बारे में दे देते हैं और उसी फैसले पर डट जाते हैं। वो फैसला या वो राय जो हमने अगले बंदे के बारे में दिया है, कभी आपने सोचा उस बंदे को उससे कितनी ठेस पहुंचती है? हम कभी ये नहीं सोचते। हम क्योंकि ज़्यादातर अगर हम आपस में झूठ ना बोलो, सीधी बात करें, तो हम ज़्यादातर बुरी राय ही कायम करते हैं लोगों के बारे में।
बिल्कुल, और ये जो आपने बात बिल्कुल ठीक की है। एक और बात यहाँ पर लिखी हुई है और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी शख्स को, अलबत्ते थोड़ी सी जो है दूसरी तरफ आ जाता है, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी शख्स के बारे में राय अपनी कायम करना चाहते हैं, किसी शख्स को जानना चाहते हैं, तो उसके उसका जो उसके जो बर्ताव है उसके दोस्तों के साथ, उससे जाने। ये भी एक बहरहाल ये जानने का तरीका है, थोड़ा सा हमारे मौजू से हट के, लेकिन कैसे जाना जाए इसके बारे में जो है ये एक बड़ी दिलचस्प बात थी। और भी बहुत ज़्यादा हमारे पास चीज़ें हैं। फेसबुक मेरे पास आप लोगों का यहाँ पर मेरे हाथ में है और आप जो चीज़ लिखेंगे वो हमारे पास पहुँच जाएगी। हम आपकी बातों का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। लेकिन मज़ा उस टाइम आएगा जब आप हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, फ़ोन लाइन के जरिए, मैसेज रिकॉर्डर के जरिए या फेसबुक के जरिए। बहरहाल आपको रास्ते बताएंगे हम इस वक्फे में, वक्फा लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे आप लोग हमारे से राब्ते कर सकते हैं। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं तेहरान स्टूडियो से, और 7:35 का टाइम हो रहा है तेहरान टाइम के मुताबिक, ईरान टाइम के मुताबिक। और बहरहाल चलेंगे रुबाब के पास और रुबाब से पूछेंगे कि हमारी आज मेहमान कौन है।
जी, आज की मेहमान हमारे साथ है डॉक्टर अनम जहरा साहिबा। और आज का मैंने कल भी मौजू बता दिया था कि बच्चों के नफसियाती मसाइल, उसके एक पहलू पर बात करेंगे यानी बच्चों में हसद, उसके क्या नताइज हैं, किस तरह उस पर काबू पाया जाए, वालदैन का किरदार, इंशाल्लाह हम इस बारे में बात करेंगे।
दिलचस्प मौजू है, बच्चों में वाकई अपने बहन भाइयों के साथ भी कभी जो है इस तरह के मसले मसाइल, हसद का मसला, जलना और ये चीज़ें जो है पेश आ जाती हैं और इसकी बेस पर बड़ी छोटी मोटी लड़ाई,
छोटी मोटी नहीं जंगें जहानी शुरू हो
गई। चले ये भी ठीक है, रुबाब का जो है तजुर्बा लग रहा है मुझे लड़ाई झगड़े का। बहरहाल तो चलेंगे हम लोग एक वक्फा लेंगे और वक्फे में हम लोग जा रहे हैं हिंदुस्तान की सैर करने इंशाल्लाह आसिफ के साथ। तो हिंदुस्तान की सैर करेंगे और उसके बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर अनम जहरा हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगी और फिर हम उनकी गुफ्तगू सुनेंगे। तो चलते हैं हिंदुस्तान।
मैं आसिफ खान आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ कुछ नया लेके। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं दिल्ली की एक पुरानी दिल्ली शहर में मौजूद हूँ जिसका पुराना नाम शाहजहानाबाद था। बहुत हो गई हिस्ट्री और बहुत हो गई तारीख की बातें, हम लोगों ने मस्जिद मकबरे देखे। आज जो है वह एकदम नया चीज़ हम आपको दिखाएँगे कि यहाँ मसालों की मार्केट में जो है यूनानी जो जड़ी बूटी हैं वो उनका क्या यूज़ होता है, उनको कौन बेचते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं मोहम्मद अहमद साहब। आप हमें जो है थोड़ा सा यूनानी जो जड़ी बूटियां हैं पहले आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए।
बैकग्राउंड ये कि हमारी ये फर्म जो है 180 साल पुरानी दुकान है।
180
साल पुरानी दुकान है
जी।
लोग नाम पढ़ता था पहले हाजी निज़ामुद्दीन ज़ैनुलाबिदीन
जी।
हम लोग भी ईरान से, हमारा ताल्लुक रहा है वही साइड से, हमारे बड़े लोग।
अच्छा, मतलब आप लोग ईरान से आए?
ईरान से हमारे बड़े लोग आए थे, यहाँ सेट हो गए।
अच्छा, ईरान से मुगल या दौर में जो है आप लोग ईरान से ही आए थे, तो आपका जो ताल्लुक है वो ईरान से है।
तो हमारे लोग जो है यहाँ पर आगे सेट हो गए
जी,
दादा पर दादा
जी,
फिर अब ये नई जनरेशन चौथी जनरेशन चल रही है हमारी।
अच्छा जी,
तो हमारे ईरान से जो आइटम आने वाले हैं जिनमें सालन मिश्री ईरानी जो यहाँ 6,000 रुपये किलो है
जी,
ये ईरान से आते हैं। सालन पंजा ईरानी आता है ईरान से
जी,
सालन पंजा।
तो आपके पास कुछ ये इस तरह की चीज़ें हैं तो हाथ में लेके थोड़ा सा दिखाएंगे तो जो है बहुत,
अभी तो आज भी नहीं है दिखाने वाला।
अच्छा, मतलब कोई भी मसाले वगैरह आपके पास हों तो जैसे वो सामने रखे हुए हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा बता दें।
हाँ, ये देखिए, ये जड़ी बूटी है, इसका नाम है पनीर डोडी।
अच्छा,
हयात, ये डायबिटीज शुगर के काम में आती है।
अच्छा,
इसके बराबर एक दवाई है आंवला है ये। ये आंवला जो है ये आता है आपका बाल वगैरह धोने के काम में
जी जी,
और पेट के काम में भी आता है, खाई जाती है
जी।
एक ये निर्मली निर्मली दवा है, ये दर्दों के काम में आती है, जोड़ों में दर्द हो जाए
जी जी,
काम में आती है। और
तो ये यूनानी जो दवाइयाँ हैं आप तकरीबन, मतलब आपको 180 साल हो गए, मतलब जब आपके जो मतलब वो जो थे पुरखे थे जो आए थे वो तभी से वो जो है यूनानी दवाएं बेच रहे हैं?
हाँ, तभी से यही दवा चल रही है हमारी।
अच्छा, मतलब आपने जो है अपने वालिद से सीखा, उन्होंने उनके वालिद से सीखा, तो आप अच्छा मतलब जनरेशन वाइज तो आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, तो मतलब हर तरह की दवाइयाँ देते हैं इसमें?
हर तरह की दवाएँ।
अच्छा, कोई ख़ास जड़ी बूटी है अभी आपके पास कुछ भी जो आप हाथ में लेके दिखाए?
इस वक्त तो आज भी नहीं है जो मैं दिखा दे आपको।
अच्छा, आप तो इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं?
इसके बारे में
ये अच्छा, इसको बताइए इसका थोड़ा सा यूज़।
इसका यूज जो है डायबिटीज़ में आता है, ये शुगर में।
अच्छा, डायबिटीज़ जो आजकल देखिए डायबिटीज़ जो एक बीमारी है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है पूरी दुनिया में जो है वो काबिज़ हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल हो जाती है और बड़ों को भी हो जाती है। पहले बुज़ुर्गों को हुआ करती थी ज़्यादा मीठा खाने से ये शुगर की बीमारी, पर आजकल जो है वो छोटे और जो है जो ये यंग लोग हैं जो जवान लोग हैं उनको भी हो जाती है। तो उसकी जो दवाई है वो जो है हर उसमें जो है मौजूद है, इंग्लिश दवाइयाँ होती हैं, होम्योपैथिक की भी होती हैं और यूनानी में, क्योंकि यूनानी जो दवाइयाँ हैं वो कहते हैं कि सबसे पुरानी दवाइयाँ हैं, मतलब पूरी दुनिया में सबसे पुरानी जो तकनीक है दवा दारू की वो यूनानी है। हाँ, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए कि ये कहाँ मिलता है ये चीज़?
देखिए, ये ईरान से आती है।
अच्छा, देखिए इसमें खास बात जब ये बता रहे थे साहब हमें कि ये ईरान से आती है,
तो नाम है पनीर डोडी।
पनीर डोडी
और यूनानी में इसको कहते हैं तुकमे हयात।
तुकमे हयात
जी, वही से आती है ईरान से। और इसका तरीका यह है कि 8 दाने जी का पानी में उबाल लें रात को
जी,
और पहले ढक के रख दें और सुबह को ये इसको पी लें आप पानी को।
अच्छा, मतलब इसको जो है 8 जो है दाने उसमें पानी में डाल के उबाल लें और फिर सुबह जो है उसको जो है नहर मुँह मतलब जो सुबह मतलब बिना कुछ खाए पिए इसको जो है खा ले तो इसको जो है मतलब काफ़ी आराम होगा, शिफा होगा उससे। जी जी माशाल्लाह, ये जो है ये ईरानी जड़ी बूटी है जिसका नाम आप बता रहे थे तुकमे हयात। तो तुकमे हयात को तो जो है हम लोग यहाँ रख देते हैं वापस जी। तो और कुछ ये क्या है?
ये खुली जल,
खुली
की जल,
पान की
जल,
पान की जैसे जो पान खाया जाता है उसकी जड़ है,
उसकी जड़ है।
तो इससे क्या होता है?
ये जनाब खास तौर पे गले के काम में आती है, जिसके अंदर टॉन्सिल आ जाए।
अच्छा,
गले में खराश हो
जी जी,
गला जुकाम हो,
हाँ,
तो इसका इस्तेमाल किया जाता है।
अच्छा, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे जो है अब सर्दियाँ आ गई हैं तो उसमें नई जो है दवाएँ जो है मार्केट में बाज़ार में जो है मौजूद हैं, बट उसमें जो है एक पान की जड़ भी है जिसको अगर लेने से जो है गले की खराश भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। आप थोड़ा सा इसको बताइए कि इसको किस तरीके से लिया जाता है, इसका तरीका
तोड़ के आपका पानी में उबालें।
अच्छा, इसका तरीका जो है मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नज़ला है, खांसी है, ज़ुकाम है, आपको कोल्ड हो गया है सर्दी से, तो आप इसको एक कप पानी में जो है थोड़ा सा तोड़ के जो है उसको उबाल लें और फिर उसके बाद उस पानी को जो है आप पी लें। आप उस पानी को जो है आराम से जैसे चाय आप पिया करते हैं, काढ़ा जो होता है, कहवा वगैरह जो होता है, उस तरीके से जो है आप इसको पी लें तो इंशाल्लाह जो है ज़रूर शिफा होता है। ये पान की जड़ है, ज़रूर इसको याद रखें। ये हिंदुस्तान में बहुत जो है ख़ास मायने रखती है क्योंकि इससे जो है पान खाया जाता है और हिंदुस्तान में जो है एक रवायत है कि खाना खाने के बाद जो है पान खाया ही जाता है। इसमें जो है आप इसके बारे में बताएं, ये
निर्मली का बीज ये खास तौर पर जोड़ों के दर्द के लिए।
अच्छा,
कुव्वत मर्दानगी के लिए, ताकत के काम।
अच्छा, ये है निर्मली का बीज जो अहमद साहब हमें बता रहे थे कि ये खास किस काम के लिए आती है? ये जोड़ों के दर्द के लिए आती है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, आम बात हो गई है ज़्यादा जो है आज के रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें जो है इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी होती है उसमें जोड़ों का दर्द होना जो है लाजमी है, तो ये उसमें काम आती है, बाकी ताकत के लिए आती है काम। इसको कैसे लिया जाता है इसको निर्मली?
इसका तरीका ये है कि इसको पानी में भिगो देते हैं
जी,
1 दिन 2 दिन 4 दिन
जी,
5 दिन पानी में भिगोना पड़ता है
जी,
पानी बदलते रहें
जी,
आधी होकर पानी बदल दें, दूसरा पानी डाल दें
जी,
इस तरह 4-5 दिन बदलने के बाद
जी
2-3 पीस लेके 1 कप दूध में
जी
उबालें
जी,
और ये खा लें ऊपर से दूध पी लें
तो ताकत का जो है ये काम करती है माशाल्लाह। ये बहुत एक हम लोगों ने जो है 3 जड़ी बूटियों की इसमें जो है बात की और तीनों की तीनों जो है बहुत ज़्यादा कामगार थी। चलिए, हम इनका जो है शुक्रगुजार करते हैं कि इन्होंने जो हमें इतना टाइम दिया और इंशाल्लाह अगले किसी मुकाम पे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
जी नाज़रीन, आप लोगों ने आसिफ के साथ हिंदुस्तान की बहरहाल खाने पीने की कुछ चीज़ें देखी और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। बहरहाल बहुत से लोगों को पता भी है इन चीज़ों का, लेकिन जिन लोगों को दूसरे इलाके के लोगों को पता नहीं है तो उनके लिए दिलचस्प होगा ये प्रोग्राम। यहाँ पर हमारे पास हसनैन रमाल साहब की ईमेल आई है और उन्होंने सलाम अर्ज़ किया है, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, से सवाल उन्होंने पूछा है कि मेरे बच्चे 10 साल 4 साल के हैं जो अब तक बिस्तर में पेशाब करते हैं, ऐसा करना मर्ज की अलामत है तो बराए करम इसका इलाज बताएं। हसनैन साहब ने गिलगित से पूछा है, एक बहुत ही आम मसला है हसनैन साहब, इसमें परेशान होने की बात नहीं है और इस पे गुफ्तगू तो बहरहाल डॉक्टर साहिबा ही करेंगी। तो चलते हैं हम गुफ्तगू के सेगमेंट की तरफ और मैं डॉक्टर साहिबा के खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और रुबाब के पास प्रोग्राम को।
बहुत शुक्रिया खुर्रम। नाज़रीन, डॉक्टर अनम ज़हरा हमारे साथ हैं और आज का मौजू आपको बता चुकी हूँ, हसद क्यों होती है बच्चों में, क्या वजूहत है, इंशाल्लाह हम इस बारे में बात करेंगे। और हसनैन साहब, आपके सवाल का जवाब भी इंशाल्लाह हम प्रोग्राम के आखिर में, गुफ्तगू के आखिर में डॉक्टर साहिबा से ज़रूर पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम,
कैसे हैं डॉक्टर साहिबा?
बिल्कुल ठीक।
बहुत बहुत खुश आमदीद प्रोग्राम में, आपने अपना वक्त निकाला
हमारे लिए, शुक्रिया आपका।
डॉक्टर साहिबा, बच्चों का दिन है और मौजू हमारा हसद के बारे में है। हसद की अगर हम बोले कितनी इकसाम है और इसकी वजूहत क्यों इन्हें पेश आती है ये बच्चों में?
असल में हसद की मुख्तलिफ इकसाम हैं और अक्सर बच्चों में हसद की वजह होती है घर से, क्योंकि शुरू होता है बहन भाइयों से, अक्सर मुकाबला हसद की वजह बन जाता है। जब घर में कोई नया बच्चा आता है, माँ बाप उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो फिर बच्चों में हसद میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ان میں حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ اب نیا بہن بھائی آ گیا ہے تو وہ ان کے ساتھ مصروف ہو گئے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اسکول جاتے ہیں تو اساتذہ اکثر بچوں میں موازنہ کرتے ہیں کہ یہ پڑھائی میں زیادہ اچھا ہے اور دوسرے کی اتنے اچھے نمبر نہیں آئے, وہاں سے بچوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے نمبر زیادہ لینے کے لیے. اکثر بچوں میں حسد قدرتی طور پر ہوتا ہے مادی چیزوں کے لیے, کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی تو وہ لینے کی خواہش پیدا ہوگی, اور اگر کبھی نہ ملی تو پھر وہ حسد میں مبتلا ہوگی. خواہش تو ہے, اس طرح بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں جو بچوں میں حسد پیدا کرتی ہیں. اکثر بہن بھائیوں میں حسد ہو جاتا ہے, ماں باپ ایک سے بھی زیادہ تھوڑا پیار کریں تو دوسرے کو حسد محسوس ہوتا ہے. یہ وجوہات ہیں بنیادی.
تو یہ تو آپ نے بولا, یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ ہم بولیں یہ باہر سے آ رہی ہے, یعنی ہم بولیں کہ ماں باپ کی وجہ سے یا کوئی ایسی چیز بن رہی ہے جس کی وجہ سے حسد یعنی بچے میں پیدا ہو رہی ہے, کوئی اندرونی چیز نہیں ہے.
یہ اندرونی چیز
جی باہر سے آنے والی وہ ہے. یہ تو بات یہ ہو گئی. ابھی اس کی یعنی ایک بچے کو حسد کی مشکل ہو گئی, وہ اپنے اوپر لے کے نہیں آ رہا ہے, یعنی اندر ہی اندر, اس کی علامتیں کس طرح وہ ظاہر کرے گا؟
اکثر بچے بہت ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ ضد کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں. کچھ بچے تو اس طرح عجیب حرکتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ ماں باپ کی توجہ حاصل کر سکیں, لوگوں کی توجہ حاصل کر سکیں. تو یہ بنیادی علامات تو یہ ہیں حسد کی.
مطلب وہ دیکھا گیا اکثر, مطلب جو خاندان میں دیکھا گیا ہے اس طرح کہ بچے چیزیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں, یا یہ چیزیں, یہ حسد کس میں آئیں گی؟ کیا
یہ انتقامی ہو جاتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, یہ چیز غصے میں آئے گی کہ وہ کچھ پھینکتے ہیں, کچھ ریئیکشن دکھاتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کا انتقام بن جاتا ہے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے, ہمیں یہ چیز نہیں ملی یا ہمیں اتنی توجہ حاصل نہیں ہوئی. کیونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے, اصل ضرورت اس کی توجہ ہوتی ہے. اور ہم لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو خصوصاً کہ ہر سال ایک سال کے بعد ایک اور بچہ, پھر ماں باپ کی جو توجہ ہے وہ نہیں رہتی صحیح بچوں پر. اور باہر کے ممالک میں, یورپین ممالک میں اکثر ماں باپ جو ہیں وہ علیحدگی کے بعد گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا لیتے ہیں, وہاں سے بچے کو جب مکمل گھر نہیں ملتا تو اس کے اندر حسد آ جاتا ہے, احساس کمتری آ جاتی ہے.
ایک طرح کا یہی بول سکتے کہ گھر کا اور خاندان کا کردار حسد بڑھانے میں یا کم کرنے میں کافی نہیں گہرا.
یہ کچھ اندرونی کچھ ہوتا ہے, قدرتی طور پہ بھی حسد بچوں میں موجود ہوتی ہے, لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے. کسی چیز کا اچھا لگنا اس کا حصول یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ تو ایک پوزیٹیو چیز ہے. لیکن جب اس میں انتقام آ جائے, اس میں ضد آ جائے, اس میں غصہ آ جائے, تو پھر یہ چیز خطرناک ہے.
اچھا ایک میں سوال ایسے ذہن میں آ رہا ہے, ہمارے ساتھ بچپن میں ہو چکا ہے یہ کہ آپ دیکھیں بولتے کہ فلاں بچے کے اتنے اچھے مارکس آئے تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے, والدین کا یہ بچے کو بار بار پڑھنا, یہ بھی کیا ایک حسد کا باعث بن سکتا ہے؟
یہ حسد کا باعث بن سکتا ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے اس بات کے بعد جو ہیں وہ بہت زیادہ یا اگر تو اس کو پازیٹیو لیں تو پڑھائی شروع کر دیتے ہیں, اور اگر اس کو نگیٹو لیں تو وہ پڑھائی اکثر چھوڑ دیتے ہیں کہ ماں باپ ایسے کہہ رہے ہیں, ان کو شاید میں پسند ہی نہیں ہوں, ان کو وہ دوسروں کے بچے اچھے لگتے ہیں.
اور اکثر میں نے دیکھا یہ بات نگیٹو چلی جاتی ہے.
بالکل, زیادہ تر یہ نگیٹو جاتی ہے,
مطلب ماں باپ اس کو بولنا چاہ رہے ہیں کہ تم یعنی اس کی طرح پڑھو, لیکن بچے اس کو نگیٹولی.
کیونکہ اس میں ماں باپ بھی اکثر, ماں باپ کا اس میں تھوڑا قصور ہے, ان کو بچوں کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے, جو بچے میں ایبیلیٹی ہے اس کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, نہ کہ دوسرے بچوں کے ساتھ اس کا کرنا کمپیریزن کرنا چاہیے.
اچھا اب یہ چونکہ ہم ابھی گھر کی ہی بات کر رہے ہیں, والدین آپ کے خیال میں کس حد تک یا ایسا کیا روش اختیار کریں گھر کے اندر کہ اس کو تھوڑا کم یا نہ بچے میں یہ مسئلہ ہی پیش نہ آئے؟
اصل میں جو بچہ ضد کرے, جو غصہ کرے, ماں باپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ ضد کر رہا ہے, یہ غصہ کر رہا ہے, تو اس بچے کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیں, علیحدہ سے ٹائم دیں, نہ کہ سب بہن بھائیوں کے درمیان میں اس کو الگ سے توجہ دیں, اس کو علیحدہ سے تھوڑا ٹائم دیں, اس کو سمجھائیں کہ تاکہ وہ اپنی اس چیز کو ختم کر سکے
بات چیت کے ذریعے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, چلتے ہیں خورم بھائی کے پاس. خورم بھائی میرے خیال سے بریک کا ٹائم ہے ہمارا,
ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ جو آئیں گے آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ ڈاکٹر انم زارہ کے ساتھ اسی موضوع کو, اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. جی ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ اب لوگ تازہ ہو چکے ہوں گے, اور دوبارہ ہم لوگ چلتے ہیں ہماری جو بحث ہو رہی تھی بچوں کے بارے میں حسد کے بارے میں ڈاکٹر انم زائرہ کے ساتھ. جی روبا,
جی بہت شکریہ خورم. ڈاکٹر صاحبہ، ایک بڑا اہم سوال جو ابھی میں نے سوچا، یہ آپ دیکھیے بچے میں بھی حسد کی پرابلم آ گئی، مسئلہ یہ پیش ہے بچے کو ہے کہ آگے چل کے اس کی زندگی میں اس کے کیا نتائج یا کیا گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں؟
جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے جو بات ہم اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں اور جو وہ محسوس کرتا ہے اور اس کے ذہن میں بات آتی ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ چیز اتنی اس کے ذہن میں پختہ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو چاہے بھی تو نہیں نکال سکتا اپنے ذہن میں. تو پھر میں نے پہلے بھی کہا کہ بچے انتقامی بن جاتے ہیں، اگر کسی کے نمبر زیادہ آئے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی مثال دی تو وہ اسے پازیٹیو اگر لیں تو پڑھائی کر دیں گے، نگیٹو لیں تو اکثر بچے کالج میں ہم لوگ اکثر واقعات سنتے ہیں فلاں نے فلاں کو مار دیا،
کتاب پھاڑ دی،
کتاب پھاڑ دی اور اس طرح
یہ پیش آتا ہے. تو یعنی یہ اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ انتقامی نتائج میں آ جاتا ہے. ابھی آپ نے کالج کی بات کی، پڑھائی کی طرف ہم آئے، اسکول کا کوئی یا ٹیچرس کا کوئی خاص رول آپ اس میں بولیں گی ہے یا نہیں؟
ہے ہے، کیونکہ اکثر جو ٹیچرس ہیں وہ بچوں میں موازنہ کرتے رہتے ہیں.
بالکل.
پھر اس کے علاوہ یہ کہ بچوں کی کمیاں بتاتے ہیں ان کو کہ تم میں یہ مسئلہ ہے، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. تو پھر وہ بچے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کا ذہن ابھی اتنا میچیور نہیں ہوتا، تو وہ یہ چیزیں بہت زیادہ اپنے ذہن میں سوار کر لیتا ہے اور وہ چیزیں اس کے ذہن میں اتنی پکی ہو جاتی ہیں کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں وہی نفرت، وہ زہر، وہ سب کچھ
رہ جاتا ہے.
وہ بے شک بتا نہیں سکتا لیکن اس کے دل کے اندر اتنا رہتا ہے. اکثر تو پھر ڈپریشن کا بچے شکار ہو جاتے ہیں. اکثر بچے جو ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب دوسرا ہم سے بہتر ہے، احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں. تو یہ تو بہت غلط ایک بات
پڑتی ہے. ابھی گھر کے اندر تین چار بہن بھائی ہیں، آپ نے بولا پھر ایک بنی، ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ، یہ اس میں تو یہ مشکل بہت پیش آتی ہے. تو والدین ایسا کیا کریں؟ یعنی آیا سب کو ایک ہی نظر سے وہ کریں؟ چونکہ ایک دیکھیں بچہ، ایک نارمل سی بات ہے کہ ایک بچہ نیو بورن ہے، اس کو توجہ زیادہ چاہیے، لیکن وہ باقی بچے نہیں سمجھتے. تو کیا کیا جائے؟
اصل میں یہ کہ ماں باپ کو سب بچوں میں برابری رکھنی چاہیے. اور ویسے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے، کسی میں کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں اور کسی میں نہیں ہوتی ہیں. تو ماں باپ کے لیے تو سب بچے ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر کسی میں کوئی زیادہ قابلیت ہے تو ماں باپ ٹھیک ہے اس کو حوصلہ افزائی کریں، پر ساتھ میں دوسرے بچوں کو بھی کریں کہ اس طریقے سے ان کی کو کریں کہ وہ اس چیز کو اس طرح لیں کہ ہمارے دوسرے بہن بھائی میں یہ خوبی ہے تو ہمیں بھی اس کا کچھ فیصد ہمیں بھی ہونا چاہیے، اس کو پازیٹیولی لیں. لیکن بار بار کہہ کر ایک بچے کی سائڈ لے کر دوسرے بچوں کو مت کریں.
ٹھیک. اچھا اب یہ آپ مان لیں کہ ایک بچہ ہے حسد کا شکار ہے، ایک لیول تک پہنچ گیا ہے کہ آپ نے بولا کہ نتائج وہ انتقام لے رہا ہے یا اس میں، تو کیا کیا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس یا سائیکیٹرکس یا کس طرح سے؟
اصل میں اس بچے کو صرف پیار دیں، اس بچے کو توجہ دیں. ماں باپ اور ٹیچرز اور دوست یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس بچے کو زیادہ پیار دیں، اس بچے کو زیادہ توجہ دیں تاکہ وہ نارمل ہو سکے.
باہری یعنی باہر سے کوئی مدد نہ لینی آپ پریفر؟
چھوٹے بچے کو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں گے، اس پہ ویسے ہی سائیکولوجیکل ایفیکٹ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ، ایک تو مجھے پسند نہیں کرتے، دوسرا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں.
کیونکہ آج کل یہ بہت ایک طرح کا فیشن بن گیا ہم لوگ کی زندگیوں میں، جب آپ چھوٹا سا مسئلہ بچے کے ساتھ ذہنی پیش آ رہا ہے فوراً کھینچ کے بچارے کو لے گئے سائیکیٹرسٹ.
بچے اصل میں بہت ان کا ذہن، میں نے پہلے بھی کہا کہ جتنا پختہ نہیں ہوتا وہ ان چیزوں کا بہت لیتے ہیں، گہرا اثر لیتے ہیں کہ مجھے سائیکولوجسٹ کے پاس کیوں لے کے جایا جا رہا ہے، میرے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے، میں کیوں نہیں باقی نارمل بچوں جیسا. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود گھر میں بچوں کو توجہ دیں،
خود جتنا پریکٹس کریں اس کے ساتھ اور بچے کے ساتھ کام کریں. اچھا ایک چیز اور کہ یہ بھی ہے کہ بچے جب حسد کا شکار ہوتے ہیں، نیل بائٹنگز ان میں آ جاتی ہیں یا وہ دیوار کے جو رنگ ہیں کھڑوں کے نوچنا، تو ان کو کس طرح روکا جائے؟ کیونکہ اب یہ حسد تو تھا لیکن وہ خود کے جسم کو بھی ضربہ،
کیونکہ بتا نہیں سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے کہ ہمیں اس چیز سے مسئلہ ہے یا ہمیں یہ چیز تنگ کر رہی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ سے ایک طرح کا انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں، ناخن تراشنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ جو اس طرح کے.
صحیح. تو اس میں سے آپ یہی ریکمینڈ کریں گے کہ ہم بات کریں بچے سے اور پیار؟
میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی کہا تھا پروگرام میں کہا تھا کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کو بچوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، بچوں میں موازنہ نہیں کرنا چاہیے, سب بچوں کو برابری کے ساتھ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے اسکول میں اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ بھی تو ہمارے اسپرچوئل پیرنٹس ہیں, تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ایکولی ٹرین کریں. اب ہم جیسے اسکول میں جاتے ہیں, ایک سا یونیفارم ہوتا ہے, ایک سا سب کچھ ہوتا ہے, ایک سی بکس ہوتے ہیں, کچھ بچوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے. تو پھر جب آپ بولتے ہو کہ یہ اچھا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, تو وہ بچہ اس چیز سے اثر لیتا ہے.
یہ ایک ابھی پھر سے بات اسکول کی طرف آ گئی, اکثر دیکھا گیا جو بچے کم نمبر لے کے آتے ہیں ان کو سب کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے,
سزا
دی جاتی ہے, یا اس کو اتنا آپ طنز و تانے بیچارے کو یا ڈانٹ پڑتی ہے کہ آپ کیوں یعنی اس طرح اور باقیوں کو دیکھو. یا مثال اس کا کہ جیسا جوتا پالش نہیں ہے, تو کافی اس طرح آیا یہ حسد کا باعث بنتی ہے آپ کے خیال میں؟
یہ چیزیں احساس کمتری میں بچوں کو مبتلا کرتی ہیں,
اور وہ احساس
اور جب وہ اپنے آپ سے بہتر کسی کو دیکھتے ہیں تو پھر ان میں حسد آ جاتا ہے. اور جب ہم ان کو موازنہ کر کے بتاتے ہیں کہ تمہارے جوتے صاف نہیں ہیں, تمہارے کپڑے صاف نہیں ہیں, تم نے ایسا کیا اور دوسرا اس طرح نہیں ہے, وہ دیکھو کتنا اچھا ہے, تو پھر ان میں اس طریقے سے حسد.
اچھا اب تک تو ہم نے حسد کی ساری بری پہلوؤں پہ بات کی, ٹھیک ہے. ایک کہتے ہیں حسد پڑھائی میں کہتے ہیں بہت اچھی ہوتی ہے, تو آپ اس کو مانتی ہیں یا نہیں اس بارے میں؟
میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بچے جو ہیں وہ پھر جب دیکھتے ہیں کہ دوسرا اچھا پڑھ رہا ہے تو وہ خود ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بچے میں بس احساس ذمہ داری ڈالیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے پڑھنا, اچھے نمبر لینا. اس بچے میں احساس ذمہ داری جب آپ ڈالیں گے تو وہ آپ کو اچھا رزلٹ آٹومیٹیکلی دے گا. وہ اس طرح نہیں کرے گا کہ مجھ پہ یہ ذمہ داری ہے تو میں یہ کام نہ کروں. اس کے بجائے کہ آپ اس کو تانے سنو, بہتر ہے کہ آپ اس کو حوصلہ افزائی کرو,
اس کو ڈیفرینشیٹ دو کہ یہ حسد بری ہے, یہ والی اچھی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, یہاں تک تو بڑی مفید اور خوبصورت گفتگو ہوئی ہے ہماری. چلتے خورم بھائی کے پاس, اختیار کو کیا لے کے آئے ہمارے لیے؟
شکریہ رباب, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی گفتگو آگے چلتی رہے گی, لیکن صرف جو ہے حسین صاحب کا سوال مت بھولیے گا.
حسنین
صاحب کا جی, بہرحال تو میں اس طرف آ جاتا ہوں, اور میں جو ہے جلدی جلدی تھوڑی سی میں نے بچوں کے بارے میں ہی بات کرنی ہے. اسکول کی بس, اسکول کی وین, کوئی بھی چیز اگر آپ استعمال کریں, گاڑی کے علاوہ کی بات کروں, کوئی ایسی بڑی گاڑی جس میں جو ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ, حادثہ وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے, اس میں کچھ چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں, کچھ چیزیں آپ کو یہاں پر بھی پتہ چل جائیں گی, لیکن میں بھی بولتا جاتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ بس سے اترتے ہیں تو پانچ بڑے بڑے قدم, وین سے اترتے ہیں, بس سے اترتے ہیں, پانچ بڑے بڑے قدم لیں گے بس سے دور جانے کی طرف, یعنی اپنا فاصلہ جو ہے وہ بس سے زیادہ کریں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کا حادثہ جو ہے وہ پیش نہ آ سکے. ایک جو چیز یہ تھی. دوسری یہ چیز کہ جب بھی آپ بس کے آگے سے گزرنا چاہ رہے ہیں, کہیں سے گزرنا چاہ رہے ہیں, بس پہ بیٹھنے چاہ رہے ہیں, بس سے اترنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو اس چیز کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ ڈرائیور آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر ڈرائیور آپ کو نہیں دیکھ رہا تو آپ وہیں کے وہیں رک جائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے ڈرائیور کا خیال نہ ہو, اس کو نہ پتہ چلے, یا وہ ریورس آ جائے, آگے چلا جائے, یا ریس دے دے. بہرحال ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ بس کے اندر جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوشش کریں, جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں, بہرحال یہ ایک بڑا بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل کام ہے, کہ آپ بس میں آرام سے بیٹھیں, اپنی سیٹ پہ بیٹھیں, کیونکہ کسی ٹائم پہ بھی اگر حادثہ پیش آتا ہے تو وہ جو بچے اپنی سیٹس میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کم سے کم ان کو صدمہ پہنچتا ہے, لیکن جو بچے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر کھیل کود رہے ہوتے ہیں ان کا نقصان جو ہے خدا نخواستہ زیادہ ہوتا ہے. اور ایک اور جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بس سے اترتے ہیں تو بالکل بھی کوشش نہ کریں کہ بس کے پاس اگر آپ کی کوئی چیز گر جاتی ہے تو بالکل کوشش نہ کریں کہ اس کو بینڈ ہو کے جھک کے, اگر آگے ٹائر کے نیچے, بس کے ٹائر کے نیچے کوئی چیز آ جاتی ہے تو بالکل کوشش نہ کریں کہ اس کو اٹھانے کی جب تک بس چلی نہیں جاتی. یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں ماں باپ کی ایک جو بات میں کہتا رہوں وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو بہت ضروری ہے کہ وہ حتم لازماً اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اگر ان کا کوئی, ان کی کتاب, ان کا بیگ, ان کی کوئی ٹیفن وغیرہ, کوئی چیز بس کے ٹائر کے نیچے آ جاتی ہے, گر جاتی ہے, بس کے نیچے آ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ خاص طور پہ بچے ماں باپ کے ڈر کے مارے, یہ جو ڈینجر زون یہاں پر دکھائی ہوئے جو خطرناک علاقے ہیں وہ اس طرف چلے جاتے ہیں اور حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ ایسے کپڑے مت پہنیں بچے جو بہت ہی ڈھیلے ہوں, جن میں یہ خطرہ ہو کہ وہ دروازے میں اٹک جائیں. या टायर के नीचे आ जाएं। यहाँ पर मैं आखिरी में बस ये बताता चलूँ कि ये देख रहे हैं आपके 10 फीट जो है 10 कदम का फासला दोनों साइडों पे बस से, और उसके अलावा जो है पीछे भी जो है बस का तो वहाँ बिल्कुल जाना ही नहीं है। आगे से भी जब आप क्रॉस कर रहे हैं तो 10 फीट के फासले से गुजर कर 10 कदम का जो फासला है उसका वो ज़रूर रखें, क्योंकि बस या वैन जो इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इनका कंट्रोल कभी कभार मुश्किल होता है। बहरहाल इस चीज़ का ख्याल रखें। चलते हैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद कुछ खाने पीने की बात करेंगे। खाने पीने की नहीं, सलामती, सेहत सलामती की भी बात करेंगे। जी नाज़रीन, मर्दों की थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग जल्दी से, मर्दों की सलामती के बारे में, ख़ास तौर पे मर्दों की सलामती के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और उसमें मैं शुरू करूंगा इन जो है मर्दों का जहन दिमाग है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें ये जल्दी से मैं आपको बताता चलूँ कि फोलेट का इस्तेमाल, फोलिक एसिड का इस्तेमाल कहा जाता है मर्दों को अल्जाइमर की जो बीमारी है उससे बचा के रखता है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको जो फोलिक एसिड है वो जितनी भी सब सब्जियां होती हैं उनमें मिलेगा, उसके अलावा जितने भी जो माल्टे किन्नू वगैरह इस तरह के फ्रूट्स वगैरह हैं, ग्रेप फ्रूट हो गया उसमें मिलेगा, और भी बारह बहुत सी चीज़ों में मिलेगा। तो अपने अगर आप चाहते हैं कि अपने आपको अल्जाइमर की बीमारी से बचा के रखें, भूलने की बीमारी से बचा के रखें, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। मर्दों में स्मोकिंग का, सिगरेट नोशी का मसला बहुत ज़्यादा होता है। स्मोकिंग के वजह से कैंसर, सांस की नाली का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर और ये सारी चीज़ें पेश आती हैं, तो जितनी जल्दी कोशिश कर सकते हैं आप अपने आप को सिगरेट नोशी से दूर कर सकें। उसके अलावा जल्दी से बात करेंगे हम लोग पेंक्रियास के बारे में, और जो कि हमारे बदन में इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन जो है जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो डायबिटीज़ की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी है उससे हमें बचाता है। इसके लिए भी कहा जाता है कि जितना ज़्यादा पनीर का इस्तेमाल करें हमारे पेंक्रियास के लिए बहुत बेहतर है। चलते हैं दिल की तरफ, और दिल के बारे में ये कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके आप जो आम तेल अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उनको छोड़ के ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल जो है उसका इस्तेमाल करें, और मुख्तलिफ किस्म के जो अच्छे तेल होते हैं उनका इस्तेमाल करें, आपका जो दिल है वो सेहतमंद रहेगा। बात करेंगे हम लोग किडनीज़ के बारे में, और किडनीज़ का भी ख्याल रखना जो है बहुत ज़रूरी होता है। कहा जाता है एक मर्द जो है वो दिन में 10 ग्लास पानी जो है वो अपने उसके उससे बदन से निकल जाता है। बहरहाल ये तस्वीर जो है खुल नहीं रही, तो उसके लिए कहा जाता है कि अपने पानी के इंटेक जो है 10 ग्लास पानी जो है आपका हतमन निकलता है अपने बदन से। पानी के इंटेक को नॉर्मल रखें, ज़रूर अपना पानी ठीक रखें, पानी की जो इंटेक है। उसके अलावा ये किडनीज़ का ताल्लुक जो हमारे ब्लड प्रेशर के साथ भी होता है। तो बहरहाल ये जो चीज़ें थीं ये मर्दों की सलामती के बारे में, सेहत के बारे में थीं, और यहाँ पर हम लोग चलेंगे रुबाब के पास ताकि रुबाब गुफ्तगू को आगे चला सकें। जी रुबाब
जी, बहुत शुक्रिया खुर्रम। डॉक्टर साहिबा, चलते हैं हसनैन साहब के सवाल की तरफ, ऐसा ना हो कि हम बातें बातों में उसको भूल जाए सवाल को। जी, गिलगित से उन्होंने सवाल किया था कि 4 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा और पेशाब बिस्तर में करते हैं बच्चे, तो इसके लिए आप क्या बताएंगे?
असल में बिस्तर पर पेशाब करना ये खुद कोई एक बीमारी नहीं है, ये किसी बीमारी की अलामत ज़रूर हो सकती है। जैसे कि बच्चों में डायबिटीज़ अर्ली एज में जो होता है उस वजह से अक्सर बच्चों को पोलियोरिया रहता है, और अक्सर बच्चों में खौफ की वजह से भी रात को बिस्तर पे पेशाब निकल जाता है। माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को शुरू से ऐसी आदत डालें 1 साल की उम्र से कि बिस्तर पे उन्होंने पेशाब नहीं करना, ताकि उनको समझ हो और डांट डपट ना करें उनकी, के बच्चों में अब उनको पता है कि ये मसला है तो वो डांट डपट करेंगे, इस खौफ की वजह से भी अक्सर बच्चों का हो जाता है। लेकिन ये है कि इसकी होम्योपैथिक में भी मेडिसिन मौजूद है और एलोपैथिक में भी। एलोपैथिक की इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगी क्योंकि कुछ टेस्ट वगैरह ज़रूरी हैं कि किस वजह से ये मसला आ रहा है, तो मसाने के कुछ टेस्ट वगैरह
सही
ब्लैडर के तो वो ज़रूरी हैं, उसके बाद ही बता सकते हैं कि क्या है। किसी करीबी डॉक्टर से मशवरा कर लें, मुआयना करवा लें बच्चे का, बच्चों का, कि क्योंकि एक में मसला नहीं है, दो में, 10 और 4 साल का, कि क्या वजह है, क्या पता डायबिटीज़ के सिम्टम्स हों। किसी करीबी डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवा लें, किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट वगैरह के पास ले जाएं। और
बात चुके हैं इंशाल्लाह कि हसनैन साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। उम्मीदवार हैं कि आपको समझ गए होंगे लाइक कि आप जिस टेस्ट करवा लें या कोई और भी तरीका हो तो आप इंशाल्लाह अपने बच्चों को इस मसले से बच सकते हैं। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रुबाब और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनम ज़ारा, आपने हमारे प्रोग्राम को हम टाइम दिया और इतनी मुफीद बातें की हमारे नाज़रीन के लिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको दोबारा भी स्टूडियो में बुलाएं और आगे भी गुफ्तगू चला सकें। सिर्फ एक चीज़ जो है हसनैन साहब के सवाल के जवाब में मैं भी बताते चलूँ, वो ये है कि बच्चे को कभी भी अगर वो पेशाब करता है, बेड को गीला करता है, तो उसको परेशान मत करें या उसके ऊपर प्रेशर डालना, ये कहना कि नहीं तुमने ज़रूर जाना है टॉयलेट, अगर उसके हाथ में होता तो वो ज़रूर टॉयलेट जाता है। ये जो मसला है इसमें बहुत बड़ा एक रोल हमारी नफ्सियात का भी होता है। बहरहाल इसमें आप जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको मज़ीद बताएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक खूबसूरत सी मौसीकी ख्वाजा अमीरी साहब की आवाज़ में चलते हैं, वो सुनते हैं, उसके बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे, प्रोग्राम को आगे चलाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में और ख्वाजा अमीरी साहब की आवाज़ में आपने खूबसूरत सी ईरानी मौसीकी सुनी, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बहरहाल मैं यहाँ बैठता हूँ और मुझे उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो एंगल है वो कैमरे के साथ अब ठीक हो गया होगा। जी हमारे जी। साथ बहरहाल यहाँ पर एक हमारे पास और ईमेल आई है, अजमत आसिफ साहब ने लिखी है और उन्होंने कहा है कि आपका शो बहुत अच्छा होता है और उन्होंने एक जो हमारे से उन्हें गिला है, उन्होंने ये लिखा है कि आप जो मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम के जो रोज़े मुबारक की तस्वीर वगैरह दिखाते हैं उसको म्यूज़िक के साथ और हिला जुला के दिखाते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है, इसके बारे में बात की जा सकती है। इंशाल्लाह हम जब भी इस बात को अपने डायरेक्टर तक भी पहुंचा देंगे और उसके अलावा जो हमारे माहिर उमूर मज़हबी जो कौम से मसात आते हैं उनसे भी इस मौजू पर हम बात करेंगे, क्या इसमें कोई गलत बात है या नहीं है। बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें इस तरह हमारे साथ जो है अपने जो बात आपके दिल में
मतलब ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप तारीफ के अलावा जो मुश्किल जो आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा आप हमें जरूर बताएं, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी बातों पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर अमल करें।
बिल्कुल। एक और बस मैं जल्दी से ईमेल बताते चलूं, मक्खन लगारी साहब ने,
एम खान लगारी
अच्छा सी क्योंकि इकट्ठा लिखा होता मास्टर मैं जो है मक्खन पढ़ लिया। बहरहाल लगारी साहब ने हमें ईमेल लिखी और उसमें उन्होंने जो है बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ जो बेसिक इतलात हैं वो हमें भेजी हैं और बहुत आपका शुक्रिया, इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में इसको शामिल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हमारी माहिर मौजूद हैं, तरबियत बच्चों की तरबियत की माहिर हैं और जी नाम है उनका
मोहतरमा सैयदा रिज़वी साहिबा। जी मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ।
वालेकुम सलाम।
जी बहुत बहुत खुश आमदीद, उम्मीदवार हैं कि आप खैर खैरियत से होंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में अपने को ज्वाइन किया।
आपकी आवाज़ मुझे कम आ रही है।
मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे को ज्वाइन किया, आपने हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद है फिलहाल।
शुक्रिया की कोई बात नहीं है क्योंकि ये एक जिम्मेदारी हर माँ की होती है, हर औरत की है कि वो कौम का अगर कोई काम होता है तो उसे आगे बढ़ाए और ले जाने की कोशिश करे, उसका एक हिस्सा बने, क्योंकि औरत ही मर्द को आगे बढ़ाकर ले जाने वाली।
जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो माजरत के साथ कि आपकी तस्वीर हम आज ना ला सके ऑन एयर, बहुत बहुत माजरत। मोहतरमा साहब मेरा पहला सवाल ये होगा कि बच्चे जो पहली बार जो 2-3 साल के होते हैं उनको स्कूल या मोंटेसरी भेजा जा रहा है, बहुत रोना धोना करते हैं, उधम मचाते हैं कि भाई नहीं जाना, वालदैन के क्या फ़राइज़ है, किस तरह उनको मोटिवेट करें तालीमी या मदारिस की तरफ जाने के लिए।
जी मुझे लगता है कुछ आवाज़ में जो है शायद हमारा
थोड़ी
गड़बड़ है, मसला इशारा। बहरहाल हम प्रोग्राम को आगे चलाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा दोबारा रابطہ हो जाए और हमारा हफ्ते का मौजू जैसे कि हमने बताया कि राय देना किसी के बारे में और बहरहाल इसको मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ एंगल से इस बात को देखा जा सकता है, मुस्बत भी मनफी भी।
इजाज़त दें तो मैं इसमें एक यहाँ पे एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि हम किसी के बारे में जब राय कायम कर लेते हैं कभी ये बैठ के थोड़ी देर के लिए सोचिए कि कितना कितना उस बंदे को ठेस पहुँची, अलग बात वैसे रबतों में रिश्तों में कितनी कड़वाहट आ जाती है इस एक राय कायम करने की वजह से, इस बारे में ज़रूर गौर कीजिए। ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में राय कायम कर लेते हैं और बाद में बंदे को उस बात का पता चल जाता है कि भाई इसने मेरे बारे में इतनी बुरी बात सोची है, ये आपके रिश्ते में आपकी दोस्तियों में कितनी करवाहट आ जाती है, इस बारे में आप क्या ख्याल
है। देखें जो है जहाँ तक आपको आपके रिश्तेदारी वगैरह और इस तरह की बातें होती हैं इनमें थोड़ा सा बंदे को ख्याल रखना, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हसास रिश्ते होते हैं और छोटी सी बात कर दी तो जो है बड़ा मसला खड़ा हो जाता है और परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। और एक चीज़ जो मैं बताता चलूँ वो ये है कि अपने दिल में कीना ना रखें। बहुत से मौक़ों पे बहुत सी ऐसी बातें पेश आती हैं जो एक इत्तफाक होता है, शायद एकदम से कोई गुस्से में होता है, कोई गलत फहमी की वजह से कोई बात कर देता है, तो कोशिश करें कीना ना रखें, फौरी तौर पर अपने दिल से उस बात को बाहर निकाल दें, क्योंकि असल ज़िंदगी जो है वो आखिरत की ज़िंदगी है। यहाँ से हमने गुजर जाना है, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल की ज़िंदगी, 100 साल, हमारी तो दुआ ये है कि हम हमारे सारे नाज़रीन जो हैं वो बहरहाल लंबी उम्र हों उनकी, बहरहाल तो कीना जो है वो कम से कम जो है अपने दिल में वो रखें। हमारे पास जो है एक वीडियो क्लिप है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में, चलें वो देखते हैं, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तस्वीर जो है हमने आपको जो दिखाई तो पसंद आएंगी। बहरहाल हमारे साथ हम मशहद से जो है लाइव आपको अभी ब्रॉडकास्ट दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बराए रास्त आ रही हैं और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा आपको हम आप लोगों की खिदमत में दिखा रहे हैं। और जो लोग आ सकते हैं मशहद वो आके ज़्यारत करें और जो नहीं आ सकते वो यहाँ से ज़्यारत कर सकते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सी बातें जो है उनकी शख्सियत के बारे में आप लोगों ने सुनी होंगी, हमने भी सुनी होंगी। एक जो बात हमेशा कही जाती है कि इमाम जो लोग दूर दराज से आते हैं, क्योंकि ख़ुद इमाम जो हैं वो एक दूसरे इलाके से आए और यहाँ पर आके ईरान में जो है मुकीम हुए, बहरहाल कहते हैं कि जो दूर दूर इलाकों से जो लोग आते हैं उनकी दुआएं ज़रूर इमाम सुनते हैं। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, मुझे और रुबाब को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।